shanti. मधुबन में हम सभी विशेष अपनी आत्म उन्नति के लिए प्यारे बाप दादा से मिलन मनाकर नए इशारों को प्राप्त करने के लिए तथा हमारे यज्ञ के बड़े भाई बहनों से हम सबकी प्यारी दादियों से दादाओं से दीदियों से ज्ञान योग ब्राह्मण जीवन की धारणाओं और सेवाओं संबंधित गहराई प्राप्त करने और बेहद के ईश्वरीय परिवार से मिलने के लिए आते हैं। जैसा बाबा सदा कहते हैं कि मधुबन में आकर रिफ्रेश हो जाओ, अपनी बैटरी चार्ज कर लो। बाबा से प्यार पालना और शक्तियां भर। आज भी बाबा ने कहा था कि मधुबन में और कोई गोरख धंधा नहीं है, कोई लौकिक पंचायत नहीं है, बस पवित्र वातावरण, यज्ञ भूमि की शक्ति, ब्रह्मा भोजन का प्रभाव और पवित्र योगी ब्राह्मणों का संग, इन सबके बीच हम अपने लक्ष्य को, स्थिति को बहुत शक्तिशाली बना सकते हैं। आप सब जानते हैं यज्ञ 80 वर्ष पूरा करके अब 2017 शिव जयंती पर 81 वर्ष में प्रवेश करेगा। स्थापना का महद कार्य, स्थापना का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है। लास्ट सो फास्ट आने वाली आत्माओं के निमित्त और विभिन्न धर्मों की आत्माओं को संदेश पहुंचाने के निमित्त आगे जितना भी रोल चलना है वो चलता रहेगा, लेकिन दैवी झाड़, दैवी धर्म का झाड़, जिसका 80 वर्षों पूर्व बाबा ने दादियों समेत कलम लगाई थी, आज वो दैवी धर्म का वृक्ष अच्छी तरह से फला फुला पूर्ण विकसित हो गए। एक समय था गिने चुने भाई बहने थे, कम सेंटर थे, आज विश्व भर में और खास भारत में गांव-गांव में बाबा के स्थान बन गए हैं। जो बाबा सदा कहते 9 लाख ब्राह्मणों को तैयार करो, आज उससे भी अधिक भाई बहने तैयार हो गए हैं। हम सब अनुभव करते हैं कि बाबा का सत्य ज्ञान प्रत्यक्ष हो गया है। चारों ओर बाबा के ज्ञान की सत्यता समझ में आ रही है और लोग हर कार्य में, हम राजयोगी भाई बहनों का हमारे ज्ञान योग की सेवा का साथ और सहयोग मांग रहे हैं। ये हमारी बरसों की सेवा, त्याग, तपस्या और सेवा का परिणाम हम देख रहे हैं कि अब हम दुनिया के सामने चमकते सितारे की तरह विश्व गगन में सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। सबकी नजर हम सबके तरफ है, हम लोगों की नजर में बहुत ऊंचे मान शान के साथ आ चुके हैं। ऐसे में जब सबकी नजर हमारे तरफ है तो जरूर हम सबकी नजर खुद के तरफ अब ज्यादा है, क्योंकि अब हमें सही अर्थ में हीरो एक्टर का पार्ट प्ले करना है। हमें बेहद का परिवार और एक विशाल संगठन हमारा बन चुका है। अब आवश्यकता है इस बेहद के संगठन को और इस संगठन की एक एक हम आत्माओं को बहुत सावधानी से और आपसी संगठन की शक्ति से चलने की आवश्यकता। देखिए, मेहनत से व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। दुनिया में भी कई क्षेत्रों में हम देखते हैं, जब व्यक्ति सिस्टमेटिक वे से अपने क्षेत्र में मेहनत करता है तो वो सफलता प्राप्त कर लेता है। हम कह सकते हैं हमारा यज्ञ सफल हो चुका है। अब है कि वो सफलता सदा बनी रहे और दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, उसके लिए हम सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी समझकर बहुत ही अटेंशन के साथ आगे बढ़ना है। जैसे भारत देश का इतिहास हम जानते हैं, गुलामी में थे, देश भर के लोगों ने और उनका नेतृत्व करने वाले लीडर्स ने पूरी एकाग्रता से, पूरे बलिदान से पूरे देश ने संगठित होकर काम किया और आजादी प्राप्त की। पर आजादी प्राप्त करने के बाद पूरे देश को ठीक चलाने की जिम्मेवारी हमारे ही कंधों पर आ जाती है, और तब हमें और जवाबदारी से काम करना होता है। और नहीं करते हैं तो उस आजादी के व्यवस्था को बनाए रखने में कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या विघ्न आते हैं, ये सारा इतिहास हम जानते हैं। इसी प्रकार हम सबने दिन रात सेवाएं की, मेहनत की। प्यारे बाप दादा तो हमारा बैकबोन है ही, उनके इंस्ट्रूमेंट बनकर दादियों से लेकर हम सब, हर ब्राह्मण आत्मा ने यज्ञ के विकास, वृद्धि और सफलता के लिए दिन रात मेहनत की है। ऐसे ऐसे भाई बहनों को देखा है सबने, जो खुद ठीक से खाते नहीं, पीते नहीं, रहते नहीं, पर बाबा की सेवा के लिए अपना तन मन धन, मन वचन कर्म लगाते हैं। उसी का परिणाम हम देख रहे हैं। हमारी संख्या भी बन गई है, हमारे स्थान भी बन गए हैं, सेवा के रिफाइंड साधन भी बन गए हैं, हमारा स्थान और प्रतिष्ठा भी बन गई है। अब हम सबके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमारी ये सफलता अंत तक बनी रहे और अपनी परिपूर्णता प्राप्त करे, और हमारा मुख्य और मूल लक्ष्य प्यारे बाप दादा को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करना, वो हम सब कर सके। कोई एक व्यक्ति तो प्रत्यक्ष नहीं कर सकेगा, अंडरस्टूड है, संगठन चाहिए। और संगठन जीतना एक मत रहेगा, एक रस रहेगा, अखंड और निर्विघ्न रहेगा, उतना ही हम बाबा के इस यज्ञ को संपन्न कर सकेंगे जिस लक्ष्य से हम चले हैं, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में साकार कर सकेंगे। वृक्ष में आप देखते हैं जड़ें, तना, फिर बड़ी बड़ी डालियां, फिर और डालियां और डालियां और डालियां, और लास्ट तक की भी छोटी पतली डालियां भी वृक्ष से कितने न माध्यमों के बाद भी वो मूल तने से जुड़ी रहती, और तभी जड़ों कहां और टॉप पर के पत्ते डालियां कहां पर, वहां तक भी उसको पालना पहुंचती। आपने कई वृक्ष ऐसे देखे होंगे टेढ़े मेढ़े उगते हैं, कोई डाली ऐसी एकदम दूसरी तरफ निकल जाती है, वृक्ष की शोभा भी सुंदर नहीं लगती, और जब बहुत बड़े हवा के तूफान आते हैं तो बिल्कुल टेढ़ी दिशा में गई हुई वो डालियां जल्दी टूटने की संभावना रहती है। यही चीज हम सबको भी ध्यान में रखनी है कि अगर हमारी इस यज्ञ वृक्ष की शोभा को सुंदर हमें बना के रखना है तो एक निश्चित आकार में सुंदरता बनी रहे, ऐसे आकार में हमारा फलना फूलना और विकसित होना जरूरी है। विकास तो हर कोई प्राप्त करता है, लेकिन जैसे आज के समय में भी लोग हर क्षेत्र के विशेषज्ञ, दुनिया देशों के जवाबदार और हर क्षेत्र के माहिर लोग सोचने लगे हैं, और वो एक शब्द देते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विकास ऐसा करना है जो इस पृथ्वी को, इस मानव समाज को सस्टेन करने वाला है। ऐसा विकास नहीं चाहिए जो मानव समाज के लिए ही खतरा हो, जीना ही मुश्किल हो। आप जानते हैं विकास के नाम पर ऐसे ऐसे प्रदूषण फैलते हैं, पृथ्वी ग्रह पर इसका असर आता है, इसलिए ये बड़े लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। नुकसान करने वाला, खतरा उत्पन्न करने वाला विकास नहीं चाहिए, उसको विकास नहीं कहेंगे, उनको तो विनाश का साधन ही कहेंगे। हम बाबा के बच्चों को भी ये सोचना है, अब समय आ गया है कि सिर्फ हमारी दादियां न सोचें, सिर्फ हमारे बड़े निमित्त भाई बहने ना सोचें, लेकिन साथ साथ, क्योंकि वो तो सोच ही रहे हैं, हमें संभाल ही रहे हैं, सावधान कर ही रहे, लेकिन हम एक एक ब्राह्मण भाई बहनों का जवाबदारी है, हम सबकी मिली जुली रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सबकी मिली जुली जिम्मेवारी है कि हम सेवा करें, वृद्धि करें, संख्या बढ़ाएं, लेकिन इस तरीके से बढ़ाएं कि हमारे मूल यज्ञ वृक्ष की सुंदरता और शोभा और शक्ति सदा बनी रहे। तो एक बात सबसे पहले हमें ये ध्यान रखनी है ना, क्योंकि कई बार सेवा के नाम पर, सेवा की लगन में हम ऐसे ऐसे विकास करते हैं कि जो मूल धारा यज्ञ के नीति नियम, यज्ञ के अनुशासन के अनुरूप नहीं होता है, तो वो जैसे टेढ़ी मेढ़ी डालियों की तरह दिखते हैं। इसलिए बाबा ने कुछ सालों पहले से हम सबको कहा था कि हर जोन, हर सब जोन, हर ग्रुप सेंटर, हर सेंटर, और लास्ट बाबा ने हम सबको कहा था कि हरेक ब्राह्मण निर्विघ्न बने। हम सब ही निमित्त हैं, जिम्मेवार हैं, सेवाधारी हैं, तो हमें ऐसी सेवा करनी है ताकि पूरा वृक्ष एक शोभा रूप हो, सलामत भी हो और शक्तिशाली भी। स्वाभाविक है, उसके लिए दो चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, सेवा का उमंग, विकास का उमंग, वृद्धि का उमंग सबको रहता है, और वो रखना है क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं को हमें संदेश देना है। लेकिन उसके लिए दो चीज अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमें भी बहुत फायदा और बाबा के इस संगठन को भी बहुत फायदा। पहली बात कि जब हम बाबा के बनते हैं, कोई ना कोई सेवा केंद्र के नियमित विद्यार्थी बनते हैं, इस ईश्वरीय परिवार के भाती बनते हैं, सदस्य बनते हैं, तो हम व्यक्ति इंडिविजुअल मिट जाते हैं और हम यज्ञ का, संस्था का एक हिस्सा बन जाते हैं। समझ रहे हो ना बात को, कि जब से हम बाबा के साथ जुड़ते हैं नियमित राजयोगी विद्यार्थी बनते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी सच्चे ब्राह्मण बनकर ईश्वरीय परिवार के सभ्य बनते हैं और बाबा के सेवा कार्य के साथी बनकर हम इस विशाल विश्वव्यापी प्रतिष्ठित यज्ञ का हिस्सा बनते हैं, तो सबसे पहले हमारी व्यक्तिगत आइडेंटिटी समाप्त हो जाती है। अब हम व्यक्ति नहीं हैं, संस्था है। लोग हमें व्यक्ति के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन विद्यालय के ब्रह्मा कुमारीज के रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं, जानते हैं। नेचुरली हम उस यूनिफॉर्म में आते हैं, बाबा का बैज लगाते हैं और बाबा के ज्ञान का संदेश सब जगह देते हैं, तो हम अनऑफिशियल भी, भले लीगली हम समर्पित नहीं भी हों, लेकिन धारणा और नियम के हिसाब से हम प्रतिनिधि बन जाते हैं, विद्यालय को जहां तहां रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जब हम व्यक्ति मिटते हैं और संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारे अंदर सबसे पहली जागृति ये रहनी चाहिए कि अब जो कुछ मुझे करना है, जो भी कर्म रूपी कदम उठाना है, फिर वो लौकिक परिवार के अंदर का कर्म है या जहां हम नौकरी धंधा करते हैं वहां का कर्म रूपी कदम है या ईश्वरीय सेवा क्षेत्र और ईश्वरीय परिवार के बीच का कर्म रूपी कदम है, वो मुझे श्रीमत पर उठाना है। ईश्वरीय नियम मर्यादा और ज्ञान के अनुरूप ही उठाना है, क्योंकि अब मैं अपनी बुद्धि समझ से नहीं जी रही हूं। अब हम सब बाबा के ज्ञान और श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, जी रहे हैं। इसलिए ये सदा हमें जागृति रहे कि हम सबको, चाहे हम छोटे गांव की क्लास के विद्यार्थी हैं, गीता पाठशाला के विद्यार्थी हैं, सब सेंटर के विद्यार्थी हैं या सेंटर के हैं, कहीं भी हैं, भल वहां सिर्फ हम 5, 10, 50, 100 लोग ही काम कर रहे हैं, भल यज्ञ मुख्यालय जोन हेडक्वार्टर सब जोन हेडक्वार्टर कहीं भी है, पर हम बाबा के बच्चे विद्यालय के तरफ से ही अपने अपने क्षेत्र में कार्य करते हैं, जीते हैं। तो ये हम सबका लक्ष्य रहे, सदा श्रीमत हमारे लिए लाइट हाउस है, उनके सिग्नल पर ही हमें काम करना है। जैसे मुरली में आता है कि वो लाइट हाउस दिखाता है समुद्र में जाने वाली स्टीमर्स को कि आपको इधर आना है, नहीं आना है, क्या करना है, यहाँ रॉक्स हैं, पत्थर हैं, किस प्रकार के अंडर करंट्स है, ये सारे हिसाब से वो लाइट हाउस गाइडेंस देता है और वो स्टीमर्स उस अनुसार ही आती है, जाती है, रुकती है, चलती है। इसी प्रकार हम सबके सामने बाबा की श्रीमत जो प्रतिदिन की मुरलियों से हमें मिलती है ना, क्योंकि कई क्लासेस, पाठशालाएं, स्थान ऐसे हैं कि जहां निमित बहनों का रोज जाना नहीं होता है, कभी कभी मिलना होता है, लेकिन बाबा की मुरली हम सबके पास पहुंचती है और उसमें बाबा ने हमें श्रीमत हर बात की दी हुई है। मुरली वो है जो प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर जिस प्रकार का चिंतन, जिस प्रकार की वाणी और जिस प्रकार का पुरुषार्थ, कर्म व्यवहार संपूर्ण बनने के लिए किया, वो ही उसमें वर्णन है। इसलिए मुरली सुनने पढ़ने वाले हर ब्राह्मण आत्मा के सामने हर बात की श्रीमत स्पष्ट। कोई भी हमारे में से ये नहीं कह सकता कि हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है, हम नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते। और जैसा बाबा सदा विज्ञान के साधनों की महिमा करते हैं, आज इस प्रकार के साधन भी निकले हैं जो एक एक ब्राह्मण आत्मा के पास बाबा की मुरली, बाबा की श्रीमत पहुंच रही। जितना अच्छी तरह हम मुरली स्टडी करेंगे और श्रीमत को पकड़ के रखेंगे कि हमें हर कर्म सेवा का हो या पुरुषार्थ का हो, घर गृहस्थी का हो या धंधे का हो, श्रीमत पर ही उठाना। हमारी यही कुर्बानी है, यही समर्पण, यहां और कोई कुर्बानी नहीं करनी है। यहां यही हमारा समर्पण है कि हम श्रीमत को फॉलो करें और परखें। श्रीमत किसको कहा है? अच्छा, हमारी निमित बहने जो भी हमें आज्ञा देती हैं, श्रीमत के अनुकूल हर आज्ञा को हमें सिर माथे स्वीकार करना चाहिए। जो भी आज्ञाएं श्रीमत के अनुकूल है उसको फॉलो करने में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बाबा कोई डायरेक्ट आके थोड़ी बताएगा, हम ही एक दो को बताते हैं आप ऐसा करो, कोई कहेगा आप ऐसा करो, आप ये करो, आप ये नहीं करो, हम ही आपस में एक दो को कहेंगे या हमारी निमित बहने कहेगी। तो हमारे में ये परख शक्ति हो कि अगर ये बातें श्रीमत के अनुकूल हैं तो हमें उनको प्यार से, रिस्पेक्ट से स्वीकार करना चाहिए। जो बातें श्रीमत के अनुकूल ना हो उनको हम ना स्वीकार करें, ये तो सबको स्पष्ट है। इसलिए मुरली का अध्ययन आत्माभिमानी स्थिति से और भगवान पढ़ाते हैं इस निश्चय के साथ इतना अच्छी तरह से करना है आज सुबह भी रतनमयनी दादी जी हम सबको कह रही थी ना कि आज भी मैं 2-3 बार रोज मुरली पढ़ती हूं। ये हम सब ब्राह्मणों का प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि मुरली ही हमारा मुख्य शास्त्र है, शस्त्र है हमारे लिए, मुरली ही ग्रंथ है, सब कुछ है। इसलिए बहुत अच्छी तरह रोज उसका अध्ययन चाहिए ताकि वो हमारी बुद्धि में स्पष्ट हो जाए बाबा क्या कहते हैं, श्रीमत क्या है। और दूसरी बात कि जब श्रीमत को स्वीकार करते हैं तो मनमत सरेंडर कर, मनमत को नहीं, परमत नहीं, एक दो के कहने पर नहीं, मन मर्जी से हमें नहीं चलना है, यही मन बुद्धि को समर्पण करना है। और सच्चा समर्पण वही है कि मन बुद्धि को समर्पण करें और श्रीमत को हम स्वीकार करें। कभी हम अपनी मन मर्जी अनुसार चलते, कभी एक दो के कहने पर चलते, हमें वो अगर हम इस संगठन को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और अखंड बना के रखना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाएं, अपनी समझ, अपनी मत को समर्पण कर देना है, समाप्त कर देना है। इसका कारण है क्योंकि हम पुरुषार्थी, हम अल्पज्ञ है, पुरुषार्थी है। अभी हमारी बुद्धि पूर्ण सतोप्रधान नहीं बनी है, इसलिए आज दुनिया में भी देखो कोई भी चीज होती है, 1, 2, 3, 4 से राय लेते हैं। फिजिकल हेल्थ की कोई बात है, 1 डॉक्टर 2-3 के राय लेते फिर कदम उठाते। हमें भी अपनी मन मर्जी या किसी के कहने पर, एक दो के कहने पर नहीं, लेकिन श्रीमत और जो हमारे मुख्य बड़े निमित्त है, हमें उनके क्लासेस भी मिलते हैं, हम उनको बार बार उनकी पालना लेते हैं और उनके द्वारा वो हमारे सामने स्पष्ट हैं। हमें श्रीमत के अनुरूप बात को फाइनल करके चलना है। तो अब जरूरत है हम सभी भाई बहने अपनी मन मत को समाप्त करें, पर मत पर चलना समाप्त करें, क्योंकि अल्पज्ञता है, अधूरे हैं, पुरुषार्थी होने के कारण इसी में कई बार गड़बड़ हो जाती है। विशेषकर सेवा जो हम करते हैं, बाबा कहते हैं संदेश देने की मना नहीं, संदेश किसी को भी हम दे सकते हैं, पर फिर हमें हर आत्मा को डायरेक्ट जो मुख्य यज्ञ के निमित्त है, सेंटर्स है, कायदे सिर खुले हुए जो भी बाबा के स्थान है, वहां उन आत्माओं को जोड़ देना है, न कि अपने तक हमें सीमित रखना है। जो आत्माएं मधुबन तक पहुंचेगी, बाबा तक पहुंचेगी, बड़ों तक पहुंचेगी, वो ही पालना और शक्ति पाकर समर्थ बनते। भल आज व्यक्तिगत रूप से बड़े नहीं मिल पाते, पर हर रोज मधुबन में संगठित रूप में हम कितने न बड़ों से मिलते। तो इससे हमें बरसों से तपस्या त्याग सेवा करने वाले, श्रीमत पर चलने वाले यज्ञ रक्षक, यज्ञ के वफादार आत्माओं के चिंतन का लाभ तो मिलता ही है। तो हम अपनी दिव्य बुद्धि इन सब के द्वारा ऐसी स्पष्ट और शक्तिशाली बना ले ताकि मनमत का कोई कदम सेवा में, सेंटर में या पुरुषार्थ में हम न उठाएं, ताकि हमारा संगठन, हमारा परिवार अखंड रहे, शक्तिशाली रहे, क्योंकि यही बड़ी हमारी ताकत है, यही हमारी शक्ति है कि इतना विकास होने के बाद भी हम दुनिया के आगे एग्जाम्पल बन सकते हैं, कितना विकास होने के बाद भी, इतना सफल होने के बाद भी हम एक हैं, एक के हैं और एक यज्ञ के लिए है ना। लक्ष्य हम सभी का यही है ना, जो समझते हैं कि हम अपनी इच्छाएं, अपने मान शान, अपना अभिमान खत्म करेंगे और बाबा के यज्ञ को और बाबा की सेवा को हम संगठित रूप से श्रीमत पर करेंगे, ये जो अपना लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, वो हाथ ऊपर करें। बहुत अच्छा, आप ताली बजाओ खुद के लिए। बाबा बैठे हैं, हम सबको देख रहे हैं। कहते हैं कि सिद्धि होने के बाद व्यक्ति को प्रसिद्धि की इच्छाएं बहुत होती है। जब हम कोई बात में सफल हो जाते हैं, कोई विशेष कला हमारे में आ जाती है, हम सीनियर बन जाते हैं, अनन्य बन जाते हैं, सर्विसेबल बन जाते हैं, माना कोई भी प्रकार की कला, सिद्धि, सफलता, स्थान जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमें खुद की प्रसिद्धि की इच्छाएं होने लगती है। हमें होता है कि हम सबके सामने आने चाहिए ताकि हमें बहुत चांस मिले और हमारी प्रसिद्धि बढ़े। ये व्यक्तिगत हमें इच्छाएं होने लगती, क्योंकि जब हम थोड़ी भी अच्छी सेवा करते हैं तो नेचुरली हमें सबके तरफ से बहुत महिमा मिलती, बहुत मान मिलता है। इससे हमें और इच्छाएं होती है कि इतनी सेवा की तो इतनी महिमा मिली, और करें और करें। तो हम अपनी प्रसिद्धि में लग जाते हैं, पर जिसने हमें ज्ञान दिया, जिसने हमारा जीवन बनाया, वो बाबा, मम्मा, बाप दादा, दादियां, बड़े, उसको हम भूल जाते हैं और अपने आप को मुख्य आगे समझ लेते हैं। तो यहाँ फिर हमें सावधान रहना है, यहाँ फिर हमें सावधान रहना है और मूल लक्ष्य को याद रखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। मैं निकली थी कौन से लक्ष्य को लेकर, कि मुझे बाबा को प्रत्यक्ष करना है, मुझे अपने आप को प्रत्यक्ष करने की इच्छाएं नहीं कर रही, वो ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक है, क्योंकि बाबा हम बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा, लेकिन हमें व्यक्तिगत वो महिमा स्वीकार कर अपनी प्रसिद्धि के प्रयास नहीं करने चाहिए, और वो ही इच्छाएं मन की शौक आदतें इन सबको ही हमें समर्पित करना है, ये बहुत जरूरी है। तभी हम न्यारे रह सकेंगे, प्यारे रह सकेंगे, सेवा का मेवा जमा कर सकेंगे, और तब भविष्य का भाग्य हमारा बहुत बड़ा बन सकेगा। अगर अभी हमने महिमा प्रसिद्धि के फल खाना शुरू कर दिया तो हमारी बाबा से हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और वो शक्ति हमारी खत्म होने लगी। जब तक हम कायदे से बाबा से जुड़े रहते हैं तब तक ही शक्ति आती। जब हम कायदे सिर बाबा यज्ञ बड़ों से कनेक्टेड नहीं रहते हैं तो ना अवस्था बनती है ना शक्ति भरती। हो सकता है हमारी सेवा से अनेकों के जीवन ऊंच बनेंगे लेकिन खुद की स्थिति नहीं बनेगी। इसलिए हमें ये बहुत सावधानी रखनी है कि मन मत समाप्त और केवल श्रीमत। और इसके लिए जो हमारी मूल चीजें हैं, भगवान का जो हमें प्रथम आदेश है वो सदा याद रख। कितना भी हम पुराने हो जाएं, अच्छे स्थान पावर पोजीशन में आ जाएं आध्यात्मिक रूप से भी, तो भी ये मूल आदेश सदा याद रखना है। गीता के शब्दों में कहें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बाबा जो कहते हैं देह सहित देह के सर्व धर्म संबंध भूलकर मेरी शरण में आओ, मुझे याद कर, इस एक आदेश में कितनी बातें। देह सहित माना आत्माभिमानी बनकर कर, ये जो हमारा रोज का अभ्यास है देहभान से न्यारा आत्मभिमानी बनना, इस अभ्यास को हमें छोड़ना नहीं। हमें इतना कहीं भी व्यस्त नहीं हो जाना है जो ये मूल अभ्यास छूट जाए। इसलिए ये एक रोज करना है। दूसरा, देह के सर्व धर्म, देह के धर्म माना ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विषय वासनाएं विकारों के अंश वंश, इसको छोड़ना है। इसलिए रोज मुझे देखते रहना है कहीं भी कोई भी विकार का अंश ना हो। मुझे लास्ट तक ये मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करनी है कि उस अंश को खत्म करना है। फिर न सिर्फ पांच बड़े विकार लेकिन आलस अलबेलापन संगदोष बहानेबाजी ईर्ष्या वैर द्वेष जो भी है, ये देह धर्मों माना विकारों के अंश वंश को छोड़ने की पूरा पुरुषार्थ करना है। तीसरा, देह के सर्व संबंध, फिर वो लौकिक संबंध है, अलौकिक संबंध है, कार्य क्षेत्र के संबंध है या किसी से भी है, वो देह संबंधों से न्यारा रहना है। इसमें किसी से भी हमारा आकर्षण नहीं, अटैचमेंट नहीं, क्योंकि देह संबंधों में और उसी के आकर्षण में आकर हम कई बार नियम मर्यादा के विपरीत कुछ कार्य करते हैं। इसलिए लौकिक अलौकिक कार्य क्षेत्र या कोई भी देहधारी के संबंध को डिटैच, न्यारा, हमें किसी से भी आसक्त नहीं हो। और ये तीनों करने के साथ चौथी बात जो इसमें है, समर्पण। एक बाबा के प्रति माना, फॉलो फादर मदर, फॉलो श्रीमत, और पांचवी बात बाबा को याद करना, स्मृति स्वरूप निरंतर बनते जाना। ये हम सभी भाई बहने ध्यान में रखकर इस यज्ञ में ज्ञान में चलेंगे तो जरूर हमारा संगठन दिन प्रतिदिन एक मत एक रस शक्तिशाली बनता जाएगा और हम अपनी सफलता की आखिरी मंजिल को भी प्राप्त कर लेंगे। ओम शांति। अब हम जो भी क्लास में अभी बातें की है वो मन में रिवाइज करेंगे और बाबा के सामने अपना लक्ष्य पक्का करेंगे। पांच संकल्प हम पक्के कर लेते हैं, सभी फिर से खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, ताकि कब से आप बैठे हैं अपने हाथ पांव स्ट्रेच कर लें, कमर सीधी कर लें, आवाज नहीं करना है। हाथ पांव स्ट्रेच कर लें, कमर ठीक कर लें, अब आ जाइए वापस आत्म स्थिति में। पांच संकल्प हम पक्के कर लेते हैं, जो खड़े रह सकते हो वो खड़े रहें, जिनकी तबीयत ऐसी हो बैठना चाहे जब भी जो बैठना चाहे बैठ जाए। सिर्फ खड़े होकर इसलिए अभ्यास कराते हैं ताकि आपको लंबा बैठना होता है फिर थक न जाए। पहला पाठ, स स्वामी स्थित होना। देहभान से न्यारे अपने वास्तविक सत्य शुद्ध दिव्य आत्मा स्वरूप में स्थित होना। पांच तत्वों की इस काया से अलग मस्तक में स्थित जगमगाती दिव्य ज्योति मैं आत्मा। राइट साइड घूम जाइए। स्वधर्म में सदा स्थित रहना। मुझ आत्मा के अनादि आदि गुणधर्म शांति आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति। मुझे इन गुणधर्मों का स्वरूप बनकर हर कर्म करना है। स्वधर्म में ही आत्मधर्म में ही मेरा कल्याण है। देह धर्म विषय विकार, दुख और भय के कारण है। राइट साइड घूम जाए, तीसरा पार्ट, मेरे सर्व संबंध, मेरी सर्व प्राप्तियां, एक बाबा से। बाबा मेरा सर्वस्व है। अब न व्यक्ति में, न वस्तु में, न नजर डूबे, न बुद्धि डूबे, हर देह झारी से न्यारी, मैं आत्मा केवल बाबा की अति प्यारी दीवानी मस्तानी। राइट साइड घूम जाए, मेरा समर्पण बाबा और यज्ञ प्रति, बाबा की श्रीमत सिर माथे, यज्ञ के हम रक्षक, यज्ञ का बुलावा सिर माथे, आज से मनमत परमत समाप्त, बाबा और यज्ञ मेरे लिए मुख्य और महत्वपूर्ण है। मेरा यह अंतिम जन्म इस अंतिम जीवन के बाकी रहे बचे दिन बाबा के प्रति समर्पित। राइट साइड घूम जाए। बैठ जाए। पांचवा पाठ मुझे निरंतर एक बाबा के याद और प्यार में मगन रहना है। बाबा बाबा और बाबा हर हाल में बाबा हर चाल में बाबा हर वेश में बाबा हर देश में बाबा ही याद रखना है। मन ही मन पांचों ही पाठ बाबा को सामने देखते हुए रिवाइज कर लें। आत्मा और मेरा बाबा मेरा स्वधर्म और मेरी सत्कर्म श्रीमत के आगे समर्पण और यज्ञ के अथक सेवाधारी यज्ञ रक्षक
बाबा तू है अपने पास। लगता है सदा हर पल बाबा तू है अपने
है सदा।